रेडियो जिंदगी 1550 एम या फिर 99.7 एफएम HT3 पे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में ईरा. शो लेके आए हैं आपके लिए AW लॉ शो, ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप. यस, इट इज टाइम वंस अगेन फॉर अस टू बी टॉकिंग टू द टीम ऑफ AW लॉ ग्रुप, जो हमारे साथ में है 4 बजे तक. एंड एवरी टाइम दे कम दे टॉक अबाउट इमिग्रेशन और एस्टेट प्लानिंग और डेट सेटलमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को लेके वो लोग बात करते हैं. आज बात करेंगे अटॉर्नी आसमा वीजा के बारे में और ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव इन द हाउस डेथ सेटलमेंट स्पेशलिस्ट अटॉर्नी वकास, जो कि डेथ सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे. तो लिसनर्स, आपके अगर कोई भी सवाल होते हैं आप जरूर फोन करके बात कर सकते हैं 5107701550 पर. दैट्स 5107701550. सो विल बी स्टार्टिंग विद अटॉर्नी वकास, जो डेथ सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डेथ सेटलमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में एटलीस्ट जो देसी कम्युनिटी है वो बहुत ही स्केप्टिकल होती है, वो ओपनली डिस्कस करना पसंद नहीं करती है. तो अगर आप अनोनिमसली फोन करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली अगर AW लॉ ग्रुप को फोन करना चाहें उनके ऑफिस नंबर पे तो अपने फोन कर सकते हैं ऑन 5109368211. दैट्स 5109368211 या फिर उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com. उनका ऑफिस न्यूवर्क में है 37600 सेंट्रल कोर्ट स्वीट 207 न्यूवर्क. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, अटॉर्नी वकास, अटॉर्नी आसमा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो.
थैंक यू वेरी मच.
गुड आफ्टरनून लिसनर्स.
योर माइक्स नीड टू बी ऑन. ऑल राइट, इज इट? लेट्स सी, आई थिंक इट शुड बी वर्किंग नाउ. कैन यू हियर मी?
Yes.
Yes. Now I can also hear you now. Hello. Okay. Let's start from the beginning. Good afternoon and welcome to Radio Zindagi.
Good afternoon, listeners. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Ira.
Good afternoon.
Thank you. Good afternoon, Ira.
So, Vakas sir, आपसे शुरू करते हैं. Debt settlement के specialist आप हैं. तो हमने कई बार बात की, हम बहुत बात करते हैं debt settlement को लेके इस पे. तो आज थोड़ा collections के बारे में बात करते हैं. अक्सर लोग कलेक्शन एजेंसी का जब नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या है वो, क्योंकि कुछ अच्छी इमेज नहीं होती उनकी. तो आप बताएंगे कि रोल क्या है कलेक्शन एजेंसी का एग्जैक्टली वर्सेस व्हाट दे डू?
शुक्रिया. इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को आज डिस्कस करूं, आई विल डेफिनेटली शेयर वन डिस्क्लेमर. दिस इज educational program. There is no relationship between attorney and client relation. This is completely for the educational purpose relation. और आपको इसके बारे में कोई भी question करना होगा जो हम आज बात करने वाले हैं तो आप हमें office में फोन करके बात कर सकते हैं. चलिए, come to the point about collections. Collection क्या है? Normally जैसे हमने अपने पिछले शो में और उससे पिछले शो में बहुत डिटेल में अपने listeners के साथ कुछ बातें share की थी about डेट. व्हाट इज डेट? डेट है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेट है आपके सिक्योर डेट है, अनसिक्योर डेट है, आपके सेकंड लीन के ऊपर डेट है, आपके स्टूडेंट लोन के ऊपर डेट है, आपकी कार लोन के ऊपर डेट है. सो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ डेट. तो जिस वक्त आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो डेट पे नहीं कर पाते हैं तो क्रेडिटर्स जो है वो आपको काफी दफा रिमाइंडर के बाद इवेंचुअली वो कलेक्शन एजेंसी को भिजवाते हैं टू रिकवर द डेट. एंड देयर इज टू काइंड ऑफ कलेक्शन एजेंसीज. एक कलेक्शन एजेंसी जो है वो तो एक XYZ कोई भी कंपनी होती है जो कि आपको अपने डेट के रिकवर के लिए आपके साथ कॉन्टेक्ट करती है, और दूसरी कलेक्शन एजेंसी है जिसको हम लॉ ऑफिस कहते हैं, डेट कलेक्टर अटर्नीस. दोनों में जो दोनों का काम होता है वो बेसिकली आपको आपके डेट जो है उसको रिकवर करना है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्शन एजेंसी? द फर्स्ट टाइम दे गोना सेंड यू अ लेटर और आपको एक टाइम फ्रेम देते हैं कि आपके पास 30 डेज हैं, 40 डेज हैं, सो ये आउटस्टैंडिंग डेट है, इसको आप पे कीजिएगा. नॉर्मली जो सिंपल कंपनीज होती हैं वो आपको थोड़ा सा लंबा टाइम देते हैं, लेकिन अगर आपके क्रेडिटर ने आपकी फाइल को किसी डेट कलेक्टर अटर्नी को भिजवा दिया है तो वो आपको नॉर्मली 60 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं देते हैं, और उसके बाद दे गोना फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट इट. सो दिस इज द रोल, कलेक्शन एजेंसीज का रोल बेसिकली. थोड़ा कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो जो क्रेडिटर है वो आपको इतना एग्रेसिवली कलेक्शन के लिए बात नहीं करता, लेकिन जिस वक्त आपकी फाइल कलेक्शन एजेंसी के पास जाती है तो वो थोड़े एग्रेसिवली आपको फॉलो करते हैं और aggressively आपसे जो है वो collection की बात करते हैं. So there is two kind of collection agencies, जैसे मैंने अभी बताया, एक तो attorney debt collector होता है और दूसरा कोई भी XYZ company जो है,
private
company जो है वो भी कर सकती है.
So basically वो आप बोल रहे aggressively करते हैं क्योंकि भाई उन्हें अपना पैसा चाहिए.
Yes, इसमें
that's all they care about.
That's true. इसमें दो चीजें हैं कि अगर collection की हम बात करते हैं या collection agencies की बात करते हैं या उनके role की बात करते हैं, तो डेफिनेटली देखते हैं वो सबसे पहले कि क्या उन्होंने वो जो फाइल ओरिजिनल क्रेडिटर से ली है क्या उसे उन्होंने बाय की है या उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं. अगर तो उन्होंने वो फाइल बाय की है और आपके डेट पे किए हैं टू द ओरिजिनल क्रेडिटर, सो देन वो बहुत ही अग्रेसिवली काम करते हैं, फिर आपको इतना टाइम नहीं देते हैं, मे बी 120 डेज के बाद वो लास्ट फुट फाइल करते हैं. लेकिन अगर वो कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं या आप एज एन एजेंट काम कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिटर, तो वो इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं. तो डिपेंड करता है, वो फिर आपके अटर्नी का ऊपर होता है कि वो सबसे पहले तो ये डिग आउट करता है, वंस वी साइन रिटेनर और वी साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, तो आपके अटर्नी का सबसे पहले ये काम होगा कि ये करे, कोशिश करे देखने की कि क्या ये जो कलेक्शन एजेंसी है क्या इसने आपके जो अकाउंट्स हैं वो बाय किए हैं या एज एन एजेंट वो क्रेडिटर के ऊपर काम कर रहे हैं. फिर आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, नो डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम टू मेक ए नेगोशिएशन. सो ये सारी चीजें कलेक्शन एजेंसी का रोल है जो कि अपने क्रेडिटर के बिहाफ के ऊपर काम करता है.
ऑल राइट, तो आप क्रेडिटर की बात जब करते हैं तो अगर क्रेडिटर के पास में आपके खिलाफ जजमेंट है तब क्या होता है?
वेल, सो ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप है. जैसे हमने कलेक्शन वाले की बात की, ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट्स से बाज़ुकात होता यह रहा है कि बेचारे कंज्यूमर को पता भी नहीं होता और लॉस सूट फाइल हो चुका होता है. वो सिर्फ उसी सूरत में होता है कि जिस वक्त आप अपने जिस वक्त लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने बिहाइंड हो गया अपनी पेमेंट से और वो पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी उस फाइल को या अपने उस अकाउंट को भी वो फॉलो अप नहीं करता कि अब उसका स्टेटस क्या. लेट्स से 6 महीने हो गए मुझे, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे नहीं किए, साल गुजर गया मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे नहीं किए, अब मुझे कलेक्शन से भी कोई लेटर नहीं आ रहा और मुझे क्रेडिटर से भी कोई लेटर नहीं आ रहा, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब मैंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पुल की तो पता चला अरे भाई मेरे अगेंस्ट तो लास्ट फुट फाइल हुआ था. कभी आपको वो स्पीना या समन्स भी ही जो है वो डिलीवर नहीं किए जाते या डिलीवर नहीं होते, हालांकि तो वो होने चाहिए लीगली, नहीं होते. और उस सूरत में जब आप अपने सारी चीजों को ओवरलुक करते हो और फॉलो अप नहीं करते हो, तो इवेंचुअली फिर जो क्रेडिटर है या कलेक्शन एजेंसी है वो आपके अगेंस्ट जजमेंट ले लेते हैं. और जजमेंट जब वो लेते हैं तो फिर इन डिफॉल्ट जजमेंट को वो रिकॉर्ड में करवाते हैं. और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद कपल ऑफ ऑप्शंस है क्रेडिटर्स के पास कि वो क्या क्या कर सकते हैं आपके अगेंस्ट. सबसे पहले तो वो देखते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो राइट अवे जो थ्रू शेरिफ जो है वो आपके गार्निश लगवाते हैं 15% to 20%. एक इससे बिग आपका जो है वो चंक निकलता है. लेट्स से आपकी सैलरी में से अगर 20% to 25% निकलना शुरू हो जाए एवरी मंथ, सो दिस इज नॉट गुड थिंग. सो पहला तो वो कोशिश हर जो जजमेंट होल्डर है वो कोशिश ये करता है कि गार्निश लगवाए जाए. नंबर टू, अगर वो आप जॉब नहीं कर रहे हो, नॉर्मली तो ट्रेस कर लेते हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो सेकेंड थिंग जो होगी वो आपके बैंक के अगेंस्ट जो है वो आएंगे और बैंक के लेवी लगा के आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो निकलवा सकते हैं. दे हैव एन ऑप्शन, वो लीन लगा सकते हैं, दे हैव अ कपल ऑफ ऑप्शन. सो उन सारी चीजों से बचने के लिए द बेस्ट थिंग है कि कभी भी आप अपने पेमेंट से बिहाइंड हो या पे नहीं कर पा रहे हो तो उसको ऐसे ही ओवरलुक ना करें, उसको इग्नोर मत करें, उसको फॉलो करें. प्रॉब्लम इसमें से भी होती है कि लोग कहते हैं यार मैं सेटलमेंट तो करवाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है. तो ठीक है, आप उसको थोड़ी देर तो रोक के रखें लेकिन कोशिश ये करें कि जैसे ही आपके पास फंड्स अवेलेबल हो तो आप उसको अवेल करें, उस चांस को अवेल करें. द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम सेइंग कि जब आप जजमेंट आपके अगेंस्ट आ गई तो आपको वो ग्रेट डील नहीं मिल सकती है जो आप लॉ सूट से पहले कलेक्शन एजेंसी से ले सकते हैं. उस वक्त शायद फिर आप 20% या 30% ही बचा सके अपनी सेविंग, लेकिन अगर उससे पहले अगर इसकी तरफ ध्यान दे दिया जाए तो देयर इज अ बिग चांस यू कुड सेव लाइक 65% to 70%.
All right. So listeners, once again, if you've just tuned in, we have AW Law Group's team here. This is the AW Law Show. आप लोग फोन करके सवाल पूछ सकते हैं. अटर्नी वकास बात कर रहे हैं डेट सेटलमेंट के बारे में. ही इज द डेट सेटलमेंट स्पेशलिस्ट. आप फोन करिए 5107701550 पर. That's 5107701550. या फिर आप उन AW Law Group के ऑफिस पे फोन कर सकते हैं नंबर पे 5109368211. And the website is awlawgroup.com. तो अटर्नी वकास जजमेंट की हम जब बात करते हैं कि आपके खिलाफ जब जजमेंट है, आपने बोला कि पेमेंट्स वगैरह जैसे जल्दी से जल्दी हो कर दें, तो ये ऑप्शंस एक बंदे के पास में है, बट हाउ, आपने बोला ना कि फंड्स आपके पास में नहीं है, सेटल करना चाहते हैं तो उसे रोक दें थोड़ी देर के लिए, वो कैसे कर सकते हैं, हम बात करते हैं इस बारे में, बट लेट्स टेक अ कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटर्नी वकास.
Hi, this is Kapil. I have a question about my credit.
Yes,
Kapil. Yes, actually Comcast ke saath unka na wo equipment tha, maine return kar diya aur pata nahi unhone collection mein dal diya tha, to maine kafi baar unko call ki to wo keh rahe hain clear ho gaya hai.
Okay.
लेकिन अभी मैं घर अपना बेच के नया लेना, छोटा घर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब की अभी थोड़ी सी चल रही है मेरी, तो क्रेडिट जो है वो मेरा नीचे गिर गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किससे चेक करना चाहिए, कहाँ कॉल करनी चाहिए, क्या करना
आपको चाहिए? सबसे पहले तो उनसे लेटर मंगवाना चाहिए, जो आपका क्रेडिट स्कोर, जो 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 आपके क्रेडिटर है उनसे आप वो लेटर ले कि एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड नथिंग अगेंस्ट यू. फिर वो आप लेटर जो है वो भिजवाएंगे अपने तीनों क्रेडिट ब्यूरो को. क्रेडिट ब्यूरो जो है तीनों की तीनों जो है वो उसको लेटर को रिसीव करने के बाद आपके अकाउंट से या आपके क्रेडिट रिपोर्ट से वो जो बैड अकाउंट है उसको डिलीट कर देंगे. अगर ऐसी प्रॉब्लम हो और वो आपका नहीं करते हैं देन कॉल इन ऑफिस और हम आपके लिए लेटर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं.
ठीक है,
ठीक है
जी, ओके,
थैंक यू.
नंबर
जी, नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लीजिए
510-936-8211. थैंक यू.
ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटर्नी वकास.
हाँ जी, विकास जी नमस्कार.
नमस्कार जी.
हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरे पास वॉलमार्ट का कार्ड था कि उसकी जो पेमेंट थी हमने सारी कर दी थी
जी.
तो मेरे बेटे ने क्या किया कि वो उसने ज्यादा पेमेंटें कर दी, तो उसने वो बाद में उन्होंने मेरे को वापस भेजा $1400
जी.
तो उसके दो महीने बाद में फिर उन्होंने मेरे को पुराने जो मैंने अकाउंट ही बंद करवा दिया था, तो मेरे को नया कार्ड आ गया था
जी.
तो दो महीने के बाद वो बिल भेज रहे हैं जी $1700 कितने डॉलर का, तुमने कोई ईस्ट कोस्ट की तरफ चलाया उधर कोई दूसरी स्टेट में, मैं कभी गया ही नहीं.
आपको $1400 आपने कहा कि उन्होंने $1400 आपको वापस किया इसलिए कि आपके बेटे ने ओवर पेमेंट किया
जी.
ओवर पेमेंट की. और आप एक काम कर सकते हैं कि जो लेटर आपके पास आया है, आई वुड लाइक टू रिव्यू दैट लेटर, कि मैं उसको पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आपको बेहतर तौर पे जो है मैं इसके ऊपर एडवाइस कर सकता हूँ. ऑफकोर्स अगर आपने उसको किसी जगह पे यूज नहीं किया तो आप उसको कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं. उनका हर क्रेडिटर का कंप्लेन एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप यू कैन मेक ए कॉन्फ्लिक्ट.
वो मैंने डिस्प्यूट कर दिया, एक साल हो गए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे.
हाँ ठीक है, तो आपका क्या कार्ड अभी आप यूज कर रहे हैं क्या, उन्होंने वापस ले लिया?
मैंने तो कभी यूज ही नहीं अभी किया.
हाँ ठीक है, उसको
डेटा ले गया उठा के,
उसको डिस्प्यूट पे ही रहने दे. अगर एक साल हो गया उसको डिस्प्यूट पे रहने दे, एक साल में भी अगर वो मसला हल नहीं हुआ तो कॉल मी, आई कैन ड्राफ्ट अ लेटर.
मैं अभी बोलता हूँ ना आपको
जी,
बताता हूँ.
सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आपका जो मैटर है, अब पूरा केस तो हम ऑनर नहीं डिस्कस कर पाएंगे, इसलिए आप अटर्नी वकास को उनके ऑफिस में फोन करें, तो आप उनसे डिटेल में बात कर पाएंगे, क्योंकि अब सवाल जवाब होंगे सब कुछ, तो हम ऑनर नहीं डिस्कस कर पाएंगे. राइट, तो मैं आपको नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पे फोन कर लीजिएगा.
लिख लिया
जी, वेरी गुड, बढ़िया जी.
थैंक यू
सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. एंड आई एम श्योर, क्योंकि ये स्टोर वाले जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इसमें काफी लोग जो है वो परेशान होते हैं. सर लिसनर्स, अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप फोन कीजिए ऑन 510-770-1550, दैट्स 510-770-1550, और यू कैन ऑल्सो कॉल अटर्नी वकास और अटर्नी आसमा ऑन द ऑफिस नंबर 510-936-8211. अटर्नी वकास, मूविंग ऑन, जब हम डेट सेटलमेंट की बात करते हैं, लॉ सूट्स की बात करते हैं, तो उन्हें सेटल करने के लिए या लॉ सूट को अवॉइड करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट टाइम? मतलब
लॉ सूट को अवॉइड करने के लिए, जैसे शुरू में मैंने एक बात की थी कि डेट सेटलमेंट को बेस्ट टाइम तो यही होता है कि जिस वक्त आप देखते हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी मिनिमम पेमेंट भी करना, तो आपकी प्लानिंग उसी वक्त स्टार्ट हो जानी चाहिए. आपको ये देखना है कि लेट्स से कि अगर अभी मैंने अपनी जो है पेमेंट स्टॉप की, डाउन द रोड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, लाइक 4 to 6 months, देर इज अ बिग चांस द क्रेडिटर और द कलेक्शन कंपनी मे फाइल लॉसूट अगेंस्ट मी. तो आपको अपनी प्लानिंग जो है वो 6 महीने पहले करनी है कि मैं लेट्स से अगर मैं अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपनी पेमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैंने पेमेंट्स बंद कर दी, लेकिन अगले 6 महीनों में मुझे वो फंड्स जो हैं वो इकट्ठे करने हैं लास्ट सूट को अवॉइड करने के लिए, और जब मैं तैयार होता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास $10,000 का डेट है और मुझे ज़हनी तौर पर यह नज़र आता है कि अगर मैं इसको डेट सेटलमेंट के लिए जाऊँगा तो मुझे मिनिमम $2,500 या $3,000 जो है वो पे करना है, फिर मैं आराम से $6,000 या $7,000 की सेविंग कर सकता हूँ। आप उसको जब पेमेंट अपनी ब्लॉक करते हो या बंद करते हो या स्टॉप करते हो तो राइट अवे तो लास्ट सूट फाइल नहीं होगा, लास्ट सूट फाइल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है या बेस्ट टाइम होता है। अच्छा मैं अभी तो कुछ कर नहीं सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी सेविंग कर लेता हूँ अगले 6 महीनों में, और जैसे ही मैं अटॉर्नी के साथ बात करूंगा तो आई कैन पे, मेरे पास उस वक्त सेविंग होगी और मैं उसको सेव करके पैसों को आई कैन पे टू माई क्रेडिटर एंड आई कैन सेव द 60%, आई कैन अवॉइड लॉ सूट।
ऑल राइट, तो डेट सेटलमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। लिसनर्स अगर आपको कोई सवाल है, देखिए किसी को सवाल है, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी विकास।
हेलो जी,
विकास
जी से बात करनी थी।
जी वो सुन
जी,
रहे हैं, प्लीज बताइए।
हाँ जी, मैं आपसे बात करनी थी कि मेरे थोड़ी डेट कलेक्ट हो गई है, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए?
आपका क्या, आई एम सॉरी, मैं आपका
थोड़ा डेट इकट्ठा हो गया, उनको सेटल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट स्टॉप कर चुके हैं।
हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं।
आप अपनी पेमेंट कर रहे हैं,
मिनिमम पे की।
अच्छा, इसके ऊपर आपका अपना नाम बताइएगा
सर। आपका नाम?
हमारा नाम है,
चले मत बताइए क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि वुड यू लाइक टू कॉल मी, मेरे ऑफिस में कीजिएगा, मैं ये सारी डिटेल्स आपको आराम से फ्री कंसल्टेशन के साथ अपने ऑफिस में बता सकता हूँ कि आपके पास आगे कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से आप स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये सारी की सारी चीज़ों से आप निकल सकते हैं। सो आप मुझे कॉल कीजिएगा ऑफिस में, आज ही बेशक कॉल करें, 4:30 के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई विल बी इन ऑफिस एंड आई विल गिव यू फ्री कंसल्टेशन।
ओके, आपका नंबर बताना
जी।
510-936-8211.
थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिसनर्स आपके पास भी कोई सवाल हो, लाइक आई वाज सेइंग, आप लोग भी फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम बैक एंड स्टार्ट टॉकिंग टू अटॉर्नी आसमा अबाउट इमिग्रेशन, सो यू स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी।
हो इश्क है तू हमारा सनम।
लवली सॉन्ग फ्रॉम अ लवली मूवी, 2003 में मूवी रिलीज हुई थी, तेरे नाम, सलमान खान एंड भूमिका चावला आई बिलीव। आप लोग सुन रहे हैं AW Law Show brought to you by AW Law Group. We have अटर्नी आसमा एंड अटर्नी विकास इन द स्टूडियो। अटर्नी विकास अभी तक बात कर रहे थे डेथ सेटलमेंट के बारे में, बट नाउ इट्स टाइम टू बी टॉकिंग टू अटर्नी आसमा जो बात करेंगी इमिग्रेशन के बारे में, और आज का टॉपिक है यू वीजा। अटर्नी आसमा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो।
थैंक यू एरा।
तो यू वीजा की बात अगर करते हैं, व्हाट इज अ यू वीजा?
यू वीजा का जो बेसिक पर्पस है ना, ये डिजाइन किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग के विक्टिम होते हैं, या फिर उनके साथ कोई बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है, जैसे रॉबरी हो गई, किडनैपिंग हो गया, असॉल्ट हो गया, उनको किसी ने मारा पीटा है, तो उनके उन लोगों के लिए यू वीजा है। जो इसके विक्टिम होते हैं वो फिर यू वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इट्स लाइक अ रिफ्यूज।
Yes, kind of.
तो अगर कहीं पे किसी के साथ में असॉल्ट हुआ है एंड एवरीथिंग, दे कैन अप्लाई फॉर अ यू वीजा एंड कम एंड सेटल इन टू यूएस, और इज इट अ नॉन इमिग्रेंट वीजा?
वेल, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीजा, बट इट कुड लीड टू परमानेंट रेजिडेंस। उसके लिए थोड़ी डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट इनिशियली जब आप यू वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो साल के लिए वर्क ऑथोराइजेशन मिल जाता है।
आफ्टर टू ईयर्स
इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है कि आपके क्राइम की सिवेरिटी क्या है। देर आर सम एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। एंड इफ समबडी इज नॉट अ लीगल सिटीजन, अ लीगल रेजिडेंट इन द यूएस, विल दे बी डिपोर्टेड इफ दे रिपोर्ट अ क्राइम?
ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यू वीजा का जो मेन पर्पज था वो यही था कि लोगों को इंकरेज किया जाए कि जहां भी कोई क्राइम हुआ है वो उसके बारे में रिपोर्ट करें। तो अगर आप, इवन इफ समवन इज एन अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन, समवन केम टू यूएस इलीगली, इफ समवन ओवरस्टेड देयर वीजा, देयर आउट ऑफ स्टेटस, दे कैन स्टिल रिपोर्ट द क्राइम एंड ऑब्टेन द यू वीजा स्टेटस।
तो लोग तो अक्सर पुलिस की नजर से दूर रहते हैं ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड।
आपकी बात ठीक है, लेकिन जब वो क्राइम को रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस को स्पेशल वो इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर वो पर्सन अनडॉक्यूमेंटेड है आप उसको डिपोर्ट नहीं करेंगे। बट वट दैट पर्सन हैज टू डू, उन्हें यू वीजा सर्टिफिकेशन लेनी होती है उसी पुलिस स्टेशन पे जहां पे उन्होंने क्राइम रिपोर्ट किया है।
ऑल राइट,
तो एक दफा वो उसकी सर्टिफिकेशन ले लें फिर उनके लिए बेहतर है। वेल एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही कोई, अगर इफ समवन इज विक्टिम ऑफ अ क्राइम, उन्हें एक अटर्नी से कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि मैं, कैन आई अप्लाई फॉर यू वीजा, इफ येस देन व्हाट आर द स्टेप्स, मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊं तो मुझे क्या डिटेल्स पुलिस वाले के साथ शेयर करनी चाहिए, क्या नहीं अपने स्टेटस के बारे में।
एंड टॉकिंग टू एन अटर्नी बाय एन अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन इज कम्प्लीटली confidential.
Yes, that's correct. Or jo attorney hai, they are not supposed to report it to the police. Chahe one documented person jo hai, even if he matlab like uski jaan bhi agar khatre mein, the only scenario where an attorney is supposed to report to the police ki agar उसको ये पता है कि ये ना कोई मतलब बंदा कोई प्लानिंग कर रहा है कोई क्राइम करने की या फिर किसी की जान को खतरा है, तो तब अटर्नी को रिपोर्ट करना होता है। अदरवाइज अटर्नीज आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट, उन्हें क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी हर हालत में मेंटेन करनी होती है।
ऑल राइट लिसनर्स, वी आर टॉकिंग टू अटर्नी आसमा अबाउट इमिग्रेशन। वी हैव 3 मोर मिनट्स टू गो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस राइट नाउ ऑन 510-770-1550। सो अबाउट द यू वीजा अटर्नी आसमा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी?
तो जैसे मैंने पहले कहा कि एलिजिबिलिटी के लिए एक तो यह है कि यू मस्ट बी अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम। वो क्राइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो सकता है, स्मगलिंग का हो सकता है, रॉबरी का भी हो सकता है,
बट नॉट डोमेस्टिक वायलेंस।
नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए फिर वो वावा के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो आप रॉबरी हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, जैसा हमारे पास अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जो एक मेरे पास क्लाइंट आया था वो 7-Eleven स्टोर पे काम कर रहा था और वहां पर किसी ने गन पॉइंट पे उससे सारे पैसे ले लिए थे।
ओके,
तो उसने फिर यू वीजा को रिपोर्ट करना चाह रहा था तो उसके लिए हमने काम किया। तो इसे आप अगर किसी रॉबरी के विक्टिम हैं या आप पर कोई असॉल्ट हुआ है या फिर आप किडनैपिंग के विक्टिम हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर यू वीजा, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसकी पहले पुलिस में रिपोर्ट करें।
पुलिस में रिपोर्ट करने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है।
वेल, पूरी इन्वेस्टिगेशन, इवन इफ इट्स स्टिल गोइंग ऑन, यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर यू वीजा टू। इट डजेंट मीन कि क्राइम जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर ही आपको यू वीजा मिलेगा।
आई मीन नॉट मीनिंग टू बी skeptical or something, लेकिन लोग इसका मिस यूज नहीं करते।
आपका सवाल सही है, कुछ लोग इसका हो सकता है मिसयूज भी करें, लेकिन जो ओरिजिनल पर्पज था वो यही था कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि
क्राइम रिपोर्ट करें।
तो अब अगर इसमें कोई मिसयूज करता है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें इसका पर्पज नहीं भूलना चाहिए कि पर्पज यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्राइम को रिपोर्ट करें।
ऑल राइट, तो अगर किसी को यू वीजा मिलता है वो या फाइल करते हैं तो डिपेंडेंस का क्या होता है, कैन दे इंक्लूड दैट?
यस, दे कैन इंक्लूड द वाइफ, दे कैन इंक्लूड द किड्स, और उनको भी उसी तरह 2 साल तक स्टे मिलेगा। और इस 2 साल में इफ दे आर एलिज बच्चे, तो बच्चों को तो ईएडी कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्पाउस है उनको मिल जाएगा।
ऑल राइट, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो हियर टुडे। लिसनर्स, यू कैन कॉल AW Law Group on their number 5109368211, that's 5109368211, or you can go to their website awlawgroup.com, or their office is in Newark, 37600 Central Court, Suite 207, Newark. We are in the last minute of our show. Attorney Asma, Attorney Vikas, anything else that you'd like to add?
Thank you very much. मैं ये कहूंगी कि फ्राइडे को हमारा दोबारा होगा इमिग्रेशन पे, so if you have any questions or concerns, please feel free to give us a call on our Friday show, which will be from 12 to 12:30 p.m.
Asma ji, ek shayad hum bhool gaye,
mere colleague class karenge
to wo haan theek hai, hum Friday ko jo
guys, thank you so much for being on air with us.
Thank you.
And thank you listeners for tuning in. Aap logon se main milungi kal subah 8 baje only on Radio Zindagi. You stay tuned and have a fabulous Wednesday. Jai Jai.